ओम शांति। कल हमने देखा एम की माया फर्स्ट पार्ट, तो उसमें सात बातें बताई थी माया के बारे में। कौन सी थी वो? पहला था मोबाइल, सेकंड इंटरनेट नहीं बोला था, सारे एम से ही है। एम से फर्स्ट मोबाइल, दूसरा मनी, थर्ड मैनेजमेंट, चौथा मॉनिटर, पांचवा मूड, छठवा मैं और मेरा, सातवां मर्डर। और अभी उसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे। तो आठवां जो पॉइंट्स है मिक्सचर, मिक्सचर माना मिक्स करना, जिसको बाबा कहता है श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं या श्रीमत में हम परमत मिक्स कर देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी श्रीमत है, कौन सी मनमत है और कौन सी परमत है। क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण आत्मा भी हमको कोई सलाह देती है तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि जरूर से कहीं ना कहीं कोई टचिंग मिली होगी, इसीलिए कोई हमको एडवाइस दे रही है, कोई मत दे रही है। क्योंकि ब्राह्मण आत्मा है तो सारे क्या करते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा करते हैं, तो अपने आप तो कहीं से दूसरी टचिंग तो होगी नहीं, तो हम जो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन होना ऐसे चाहिए कि हम खुद बाबा को कोई भी सवाल पूछें और उसका बाबा हमें जवाब दे, खुद को हमें ये टचिंग होनी चाहिए, ये जवाब जो है बाबा के पास से आया हुआ है। क्योंकि अगर आज हम किसी से कोई भी सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, वो हमें उत्तर देता है उसके बारे में और वो सही भी हो जाता है, हमने किसी को पूछा हम ये करें या ना करें, उसने आज उत्तर दे दिया हमको, हाँ आप करो या ना करो जो भी है, और वो बात सच हो गई, फिर हम नेक्स्ट टाइम के लिए भी उस व्यक्ति को ढूंढेंगे कि वो व्यक्ति कहाँ गया, उसके पर हम डिपेंड हो जाएंगे। तो ऐसा न हो, इसके लिए ये होना चाहिए कि हमारी लाइन जो है बुद्धि की इतनी क्लियर होनी चाहिए कि खुद हमें मालूम पड़ना चाहिए कि ये बाबा की मत है या किसकी मत है। तो उसके लिए जो है योग हमारा इतना पावरफुल होना चाहिए, ये दिमाग जो है हमारा वेस्ट और निगेटिव से इतना फ्री होना चाहिए कि हमें खुद को मालूम पड़े ये टचिंग कहाँ से आ रही है, कहीं ये मेरे मन की मत तो नहीं है, कहीं अपने आप तो मेरे मन से नहीं निकल रहा है, या खुद ये बाबा तो हमें टच नहीं कर रहा है इस तरह से। तो कोई भी मिक्सचर नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का मिक्सचर है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि सोने में अगर अलॉय मिक्स हो जाता है कोई भी, तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि लास्ट में ऐसा सिचुएशन आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी कि कोई हमारे आसपास नहीं होगा जो हमें सलाह दे या जिससे हम पूछ सकें। बाबा ने कहा ना कि अंत में जो है ये वायरलेस जो है बंद हो जाएगा और वॉइसलेस अवस्था जो है निर्विकारी अवस्था, उसी अवस्था में हमको टचिंग मिलेगी बाबा की कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कई लोगों के अनुभव सुनते हैं हम, कि थोड़ा दिन पहले भी किसी के एक भाई का सुना था, तो बाबा ने उसके लिए संदेश में कहा था कि बाबा पिछले 5 साल से बच्चे को टच कर रहा है, लेकिन बच्चे की लाइन क्लियर नहीं, तो बाबा उसमें क्या करे। तो 5 साल से बाबा टच कर रहा है लेकिन बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा है, और वो व्यक्ति कहता है, वो आत्मा कहती है कि मैं तो अच्छी ज्ञानी योगी हूं, मैं तो बहुत ज्ञान योग करती हूं, तो ये सिचुएशन क्यों हमारे सामने आ गई। जो भी हो, चाहे पर शरीर की हो या कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी घर की प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, क्योंकि हमारी लाइन क्लियर नहीं है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं बोलेगी कि मेरा योग अच्छा नहीं है या मेरा ज्ञान अच्छा नहीं है, हर कोई यही कहेगा कि बस हम बैठे बाबा के पास और बस उड़ गए। अब ये संडे की जो चलने वाली मुरली है उसमें बाबा ने अलग अलग बातें बताई, स्नेही आत्माएं कौन सी है, सहयोगी आत्माएं कौन सी है, अलग अलग बहुत सारी बातें बताई हुई उसमें बाबा ने। तो हमको जो ये कहना चाहिए, हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार से हम डिपेंड न रहे। तो कोई भी अगर श्रीमत मिलती है तो उसमें मनमत है या परमत है जो भी है, किसी भी प्रकार की मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए अपनी, इसके हिसाब से हम श्रीमत को तोड़ मरोड़ के करें। हर एक को बाबा ने अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से श्रीमत दी हुई है। जैसे हमने कई बार सुना भी ना क्लास में, रमेश भाई जी ने पूछा था, जो अकाउंट्स के रमेश भाई थे, कि मैं हमारे क्लाइंट्स के यहाँ चाय वगैरह पी सकता हूँ, तो बाबा ने कहा था कि नहीं नहीं पीना है आपको। और भाई ब्रिजमोहन भाई ने जब पूछा बाबा को, तो बाबा ने कहा बच्चे आप पी सकते हो, क्योंकि दोनों की सिचुएशन अलग थी। रमेश भाई का खुद का बिजनेस था तो बाबा ने उनको मना किया था कि अगर आप पीते भी हैं, अगर आप नहीं पीते दूसरे के पास में चाय, तो उनको लगेगा कि देखो ये व्यक्ति कितना वफादार है, ईमानदार है अपने नियमों के प्रति, क्योंकि नियम है कि हम किसी के घर का खा पी नहीं सकते। और ब्रिजमन भाई के लिए इसलिए हाँ कहा था क्योंकि वो दूसरे के अंडर में जॉब करते थे, अगर वो नहीं चाय पानी पीते अगर दूसरे के यहाँ, तो ये हो सकता था कि उन्हें शायद जॉब से निकाल दिया जाए या उनकी प्रमोशन रोक दी जाए, वो सारी परिस्थिति बातें हैं। तो बाबा हर एक की सिचुएशन को देखते हुए, नब्स को देखते हुए उस प्रकार से उन्हें एडवाइस देता है, उन्हें श्रीमत देता है। जैसे बाबा कहता है कि मिलिट्री वालों को भले छुट्टी है, आप बाहर खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई मिलिट्री से रिटायर हो जाए, वो तो घर का उसको मिल रहा है, फिर भी वो ट्रेन में जाते हुए सोचे कि बाबा ने तो मिलिट्री वालों को छुट्टी दी है, तो क्या ये सही है? नहीं ना, अभी तो मिलिट्री से रिटायर हो गया ना, अभी तो कर सकते हैं। हाँ, मजबूरी में, वही बाबा ने कहा मजबूरी में, अगर कोई आपको नहीं कोई ऑप्शन है तो मजबूरी में आप खा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए, अगर मिक्सचरिटी है तो माया जो है फिर अपनी तरफ खींच के लेके जाएगी। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? आठवां पॉइंट हो गया। उसके बाद में नवा पॉइंट जो है मानशान। मानशान की इच्छा हर किसी को होती है। बाबा भी मुरली में कहता है ना कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं तुम बच्चों के लिए स्वर्ग लाया हूँ, तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लाया हूँ। लेकिन बाबा का मैपन जो है अलग टाइप का मैपन है, और हम आत्माओं का जो मैपन होता है अलग टाइप का मैपन होता है। हमारा मैपन जो है और अहंकार को हमारे बढ़ाते जाता है। जैसे बताया ना, मेरा योग अच्छा है, मेरा ज्ञान अच्छा है, मेरा चिंतन अच्छा है, तो उसमें जो है मान शान की इच्छा अपने आप हमारे अंदर कहीं ना कहीं 63 जन्मों में संस्कार भरे हुए हैं, और उस हिसाब से वो इच्छाएं हमारी बाहर निकलती है। अगर कोई हम कोई कितना भी कहे कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, फिर भी लोग इस तरह से करते हैं कि नहीं नहीं आपको तो मिलना ही चाहिए ना, आप तो इतने पुराने हैं, आप तो इतने ज्ञानी योगी हैं, आप ऐसे क्यों करते हैं? नहीं नहीं थोड़ा तो ले लो, थोड़ा तो होना ही चाहिए, आप इतना अच्छा ज्ञानी योग करते, कोई आपको जानता ही नहीं, कोई पहचानता ही नहीं आपको। तो हमारे अंदर नहीं भी अगर वो इच्छा है तो भी लोग जो है बाहर से आके डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा तो मानशान होना चाहिए, कितना दिन आप गुप्त रहेंगे, कितना दिन ये करेंगे। तो जब सूरज उगता है तो सूरज को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सूरज हूं और अब मैं उग रहा हूं, अपने आप मालूम पड़ता है। तो मानशान की इच्छा ऐसी है कि इसके पीछे आप जितना जाएंगे ना उतना कम ही पड़ता है। जैसे दिखाते हैं ना, कहानी बताते हैं कि एक कोई बॉक्स होता है, एक व्यक्ति को कोई खोपड़ी या कुछ ऐसे मिलता है, उसको समझ में नहीं आता ये क्या है, तो उसके अंदर वो जो भी चीज डालता जाता है वो सब चीज गायब होती जाती है। तो वो एक सन्यासी के पास जाता है, पूछता है कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें जो भी डालता हूं मैं सब गायब हो जाता है, सब पता नहीं कहां जाता है। तो बोलता है ये इंसान की खोपड़ी है, बोलता है ये तो ये ऐसी चीज है कि इसमें जो भी डालो कम ही पड़ेगा इसमें ऐसे। तो ये नाम मान शान की जो इच्छा है, मान शान की, कि दूसरों को देख के भी हमें लगता है कि उनका इतना मान शान हो रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए, वो इतने आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी होना चाहिए ना। तो जैसे कल भी बताया था कि मैं और मेरा, मैं और मेरा आने के बाद में फिर मान शान की इच्छा आनी अपने आप आएगी ही। यहाँ पे मैं और मेरा आता है, वहां पे मान शान व्यक्ति को चाहिए होता है, तो हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जैसे कल बताया था कि एक ही इसमें है, अगर हम कोई सेंटर पे है या मधुबन में है, कहीं पर भी कोई भी ब्राह्मण आत्मा है, एक दूसरे को देख के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो होती है कि हमारे से आगे बढ़ रहा है या हमारे से पीछे आया है, इसकी तो क्वालिफिकेशन हमारे से काफी कम है, या हम इससे सीनियर है, या हमारे से आगे क्यों जा रहा है, बहुत सारी बातें होती है। तो इसको सूक्ष्म में चेकिंग करके, जैसे बताया थोड़े दिन पहले ही मुरली में बाबा ने बताया कि जितने झंझट हो सके, बंधन हो सके, कम करते जाओ। तो ये मान शान का भी एक बंधन है, अब सेवा करो जो भी हो, बाबा के ऊपर देके हुए हो जाओ, फ्री हो जाओ, बाबा को पता है क्या करना है। कई बार हम दूसरों को देखते हैं कि ये इतना गलत कर रहा है, ये भी कर रहा है, इसमें इतनी बुराई है, इसमें ये है, फिर भी आगे बढ़ते जाता है। एक बार जगदीश भाई ने उनके क्लास में कहा था कि हम कोई ऐसा होता है कि कोई किसी ने कोई छोटी मोटी गलती कर दी या कुछ भी ऐसी बात हो गई, तुरंत मालूम पड़ जाता है तो उसको सजा मिलती है या कुछ भी होता है, तो उसको लगता है कि देखो मैंने तो एक ही बार किया और मुझे तुरंत उसका पनिशमेंट भी दे दिया बाबा ने, ड्रामा अनुसार मिल गया जो भी है, और ये व्यक्ति तो इतने समय से इतना गलत काम करते आ रहा है फिर भी आगे ही बढ़ रहा है, फिर भी ऊंचाई जा रहा है, आगे ही जा रहा है। तो जगदीश भाई ने कहा था कि आप जो है पहली मंजिल से गिरे हो, आप बच सकते हो, वो व्यक्ति जो है 99 मंजिल से गिरेगा तो उसकी क्या हालत होगी फिर? तो कोई ये ना सोचे कि बाबा कुछ देखता नहीं है, बाबा को कुछ पता नहीं, बाबा को सब कुछ पता है, लेकिन बाबा हमारे दिल की सच्चाई सफाई देखता है कि आप कितने ईमानदारी से, वफादारी से बाप के साथ चलते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा करते हैं। तो कोई ये ना सोचे कि इसको नाम मान मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है, जिसको जो मिलना चाहिए वही चीज मिल रही है, जिसके जो नसीब में है वही उसको मिल रहा है, जो आपके नसीब में नहीं है वो भगवान भी नहीं दे सकता, वो जो आपके नसीब में है वो भगवान छीन भी नहीं सकता। तो मान शान के पीछे ज्यादा भागना, इसको ये मिल रहा है ये मिल रहा है, वो ठीक नहीं है। तो ये नेक्स्ट हो गया मानशान, उसके बाद एक कौन सा पॉइंट हो गया, नौवां पॉइंट हो गया, उसके बाद में जो दसवां पॉइंट जो है मशीन, मशीन माना फैसिलिटीज, उससे लिया हुआ है। कोई भी साधन है अगर किसी को मिलता है और हमारे मन में ये होता है कि उसको मिल रहा है हमको मिल नहीं मिल रहा है, तो ये जो भावना जो हमारे अंदर है कहीं ना कहीं फिर किसी न किसी इच्छा की तरफ लेके जाएगी। और बाबा हमेशा कहता है कि इच्छा जो है अच्छा बनने नहीं देती, किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा हो। तो जो भी बाबा ने कहा कि साधन दिए हैं आप बच्चों के लिए दिए हुए, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही यूज करें। बाबा कई बार कहते हैं कि जो आदि में था वही अंत में होगा, तो आदि में क्या था यज्ञ में, आदि में सादगी थी, साक्षात्कार, तो साक्षात्कार तो अंत में भी होगा। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि आगे जाके साक्षात्कार होगा। आदि में जो यज्ञ में जो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी लेकिन लोगों में स्नेह प्यार बहुत था, तो अंत में भी वही होगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अंत में दो ही प्रकार की ब्राह्मण आत्मा इस यज्ञ में रहेंगी, ये मैं कह रहा हूं, बाबा ने नहीं कहा, मुझे जो लगता है। एक तो वो जो अच्छे ज्ञानी योगी आत्माएं होंगे, और दूसरे वो आत्माएं जो बस बाबा बाबा करने वाले होंगे, बस बाबा के पीछे सब कुछ करने वाले। जैसे शुरुआत में भी दादियां आई थी, तो हर किसी दादी का, जैसे बाबा मुरली में नाम भी लेता है, कई बार बताता है कि भोली दादी, जो कभी मुरली में बाबा कहता था कि नहीं आती थी, लेकिन उनकी सेवा इतनी थी, अथक सेवा। वो हमेशा उनकी भंडारे की सेवा थी, तो वहीं पे रहते थे हमेशा। जैसे भूरी दादी के लिए बताते, वो हमेशा बस में ट्रेवलिंग करती थी, आबू रोड आदि जाती थी। वो उनका पार्ट है हर एक का, वो दूसरी सेवा में बिजी ना। हाँ, सेवा की है, वही बोल रहा हूँ। तो हम तो जो भूरी दादी थी, भूरी दादी भी बस में आती जाती थी, पार्टियों को रिसीव करना, सामान लेके आना, सब्जियां लेके आना, तो उनके पास इतना समय नहीं होता था, टाइम नहीं होता था, रेस्ट कब करेंगे, नींद कब करेंगे, तो बस में आते जाते अपनी नींद पूरी करती थी। तो एक वो है जो बाबा के प्रति पूरे वफादार है, ईमानदार है, सच्चे हैं, भूरी दादी। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो बस बाबा ने जो कहा और हमको करना है, सच्ची दिल वाले, बाबा के पीछे अगर बाबा कहे कि बच्चे अपना गला भी काट के दे दो, तो बिना क्यों क्या पूछे अपना गला भी काट के देने वाले, वो प्रकार के बच्चे। और फर्स्ट टाइप के जो बच्चे बताए कि जो एकदम पूरे ज्ञानी योगी आत्माएं जो है, एकदम वही टाइप की आत्माएं यज्ञ में रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है, मैं कह रहा हूं ये। तो जो बताया मशीन फैसिलिटीज, जितना हम फैसिलिटीज के पीछे जाएंगे हमारी बुद्धि जो है खराब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए भी बताते हैं कि जहां जितने भी आजू बाजू हमारे वाइब्रेशन फैल रहे हैं, मोबाइल्स के टावर के है या कोई भी है इलेक्ट्रॉनिक चीजों के, तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। एक अमेरिका में रिसर्च हुआ था, उसमें बताया कि जो आईटी प्रोफेशंस वाले लोग हैं, कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चलाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के नजदीक ज्यादा रहते हैं, उन लोगों को मेंटल बीमारियां ज्यादा होती है, उनका जो है डिवोर्स का केस जो है, तलाक का जो केस है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें ऐसे वाइब्रेशन फेंकती हैं, जब वो गर्म होती है, जब चलती हैं, ऐसे वाइब्रेशन फेंकती हैं कि जो हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए जो है अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे लोग हमेशा ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए यह है कि जितना कम से कम हो, कोई भी साधन हो, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक चीज का एग्जांपल दिया, कोई भी साधन हो कम से कम हम यूज करने की कोशिश करें, अपने आप को किसी के ऊपर भी डिपेंड ना बनाए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का साधन हो, चाहे लाइट का साधन हो। भाई आज हमको लेट हो गया रेडी होने में क्योंकि लाइट नहीं थी, हमको पहुंचने में लेट हो गया क्योंकि गाड़ी नहीं मिली, तो ऐसा कोई भी ये ना हो, खाना डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपके पास चीज है, आप भले उसको यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा ने कहा सब आपके लिए, लेकिन डिपेंड नहीं होना चाहिए। कल चीज अगर आपसे वो ले ली जाए या छीन ली जाए, तो आपका ज्ञान योग उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए कि ये नहीं है तो मैं कैसे चलूं करके। मोबाइल में क्लास ही नहीं आ रहा, आज व्हाट्सएप पे क्लास ही नहीं आया, सुना ही नहीं, आज चिंतन ही नहीं हो रहा, क्या करेंगे करके, तो ये अवस्था नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार के मशीन या फैसिलिटीज के ऊपर जो है हमारी पुरुषार्थ जो है हमारा डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है बारहवा, सॉरी ग्यारहवा, नेक्स्ट जो नौवा दसवा ग्यारहवा, नहीं 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 ग्यारहवा ग्यारहवा सॉरी ग्यारहवा, नेक्स्ट जो पॉइंट है ग्यारहवा, वो है मोह। ब्राह्मण आत्मा में भी बहुत सारा मोह होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। कोई अगर पूरी परिवार का परिवार ही ज्ञान में है तो भी ऐसा जरूरी नहीं कि उनमें बिल्कुल मोह नहीं है उनमें। फिर भी इतना ये होता है, बस अनुभवी इतना मुंह होता है, यहाँ आएंगे भी तो सब साथ में आएंगे, मधुबन में आएंगे तो भी साथ में आएंगे, वॉकिंग करने भी साथ में आएंगे, कई बार बोलना नहीं चाहिए लेकिन जो दिखता है वो बोलने में आता है। सवेरे अमृत वेले भी साथ में ही जाएंगे, एक एक उठा अगर योग करके तो दूसरा भी उसके पीछे ही उठेगा, तीसरा भी उसके पीछे ही उठेगा, अगर वो बाबा के कमरे में गया तो वो भी बाबा के कमरे में जाएगा। वहां साथ में रहते हो, यहाँ भी साथ में रहने की क्या जरूरत है, सेंटर पे भी हमने कई बार देखा हुआ है ऐसे, तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन दिखते में आता है। तो ये मुंह की रग जो है चेक करनी चाहिए कि सचमुच हमारा कितना मुंह है, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, चाहे देह है, देह के पदार्थ है, किसी भी चीज में। बाबा कहता है कि इस देह की आपको संभाल भी करनी है, क्योंकि इस देह से सेवा बहुत करनी है हमको, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दिन भर देह के पीछे पड़े रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी दिखाते ना, बाबा बैडमिंटन भी खेलते थे, कई बार अलग कुछ क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे, ऐसे अपने आपको थोड़ा फिट रखने के लिए अलग बात है, लेकिन हम सारा दिन इस शरीर में ही पड़े रहे, या शरीर के पदार्थों में ही पड़े रहे, या शरीर के जो भी संबंध है इनमें ही पड़े रहे, घर से कुछ फोन आ गया, ऐसे ऐसे कुछ हो गया घर में और यहाँ हमारी अवस्था खराब हो गई, तो इसका क्या मतलब है फिर, ये हमारा ज्ञान योग कहाँ चले गया सारा फिर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सारा दिन मोह में ही है लेकिन हमको पता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस बीमारी से पीड़ित होता है, कई बार ऐसे होता है कि उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता कि मुझे ये बीमारी है, लेकिन जब सामने वाले कहते भी है कि आपको ये बीमारी है लेकिन वो मानने के लिए रेडी नहीं होता, तैयार नहीं होता। जब तक हमको खुद को रियलाइजेशन न हो, ये फील न हो कि मुझे ये बीमारी है, तब तक कोई भी आए हम ठीक ही नहीं हो सकते। तो खुद को अगर हमको ठीक करना है तो सबसे पहले अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कितना मोह है, क्या है, जो भी है, चाहे हम उसको कहते हैं कि मोह नहीं है तो सिर्फ ऊपर ऊपर हम जब चाहे इससे डिटैच हो सकते हैं, तो सचमुच हमको चेक करने की जरूरत है। जैसे कई लोगों को आदत होती है, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, चाय पीने की आदत है समझो, तो हमको चेक करना चाहिए हम सचमुच चाय को छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते हैं? जो भी है, मैंने कहा ना किसी भी चीज पे मैं डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है किसने भी शुरू किया आप पी रहे सही बात है, लेकिन एक दिन अगर आपको चाय नहीं मिलती है, सवेरे आप किसी को आदत है भाई नाश्ते के बाद चाय पीना, या जो भी टाइम पे हम पीते हैं, शाम को पीते हैं, जब भी पीते हैं, तो ये चेक करना चाहिए कि आज अगर हमको चाय नहीं मिल रही है तो हमारी अवस्था कैसी है, कहीं हमको सर दर्द तो नहीं हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि चाय नहीं पियेंगे तो हमारा पेट ही साफ नहीं होता है, बहुत लोगों मतलब अलग अलग सिम्टम्स होते हैं लोगों के, जो भी है ना ऐसे, ये भी चीजें सब मोह में आती। मोह माना कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत जैसे संबंधों में ही है या खाने पीने में ही मोह, ऐसा नहीं करके, जो भी चीज हमको अपने पर डिपेंड कर रही है वो चीज में हमारा कहीं ना कहीं मोह है, आसक्ति है, कहीं ना कहीं लगाव है उस चीज से, हम डिपेंड हो चुके हैं उन चीजों के ऊपर, तो हमको चेक करना चाहिए कि सचमुच हमारे अंदर कितना परसेंट में भरा है, या जब चाहे हम उसे छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, उसके वजह से हमारे ज्ञान योग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हमारी अवस्था तो नहीं खराब हो रही उस चीज की वजह से। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट 11 मोह। उसके बाद नेक्स्ट जो है 12वां पॉइंट जो है मित्रता, फ्रेंडशिप। मित्रता वैसे कहा जाता है कि बहुत अच्छी दोस्ती है, मित्रता की मिसालें दे जाती है, सुदामा और कृष्ण की दोस्ती, दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती, अलग अलग मित्रता। हाँ भरत और राम तो भाई थे ना, दोस्त थोड़ी थे वो तो। तो अलग अलग मिसालें दी जाती है दोस्ती की, तो दोस्ती भी वो हद तक सही है कि जो हमको ज्ञान योग में आगे बढ़ाए, जो हमको मदद करे किसी इसमें, लेकिन ऐसा ना हो कि हम उस दोस्ती में ही फंस जाए कि वो नहीं है तो बस हमारा काम ही नहीं चले। थोड़ा दिन पहले कुछ प्रोग्राम था तो हम गए थे उसमें, तो किसी ने कहा अरे आपका वो दोस्त नहीं आया, मैंने कहा भाई हम लक्ष्मी नारायण थोड़ी है कि जहां लक्ष्मी जाएगा वहां नारायण जाएगा, जहां नारायण जाएगा वहां लक्ष्मी जाएगा, हम दोस्त है, हम दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई जरूरत थोड़ी कि वो जहां जाए मैं भी वहीं जाऊं, वो जो ना करे मैं भी वो ना करूं करके, ऐसा कोई ये नहीं। लेकिन कहा ना दोस्ती एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन हमारे मन में दूसरे किसी को देखकर भी ये भावना ना हो, किसी को हमने एक बार दो बार देख लिया, किसी से बात करते कुछ सहयोग लेते हैं तो हमको लगे कि हाँ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, इनका आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि जिनका कहीं ना कहीं मतलब लोग आते जाते रहते हैं, जैसे डिस्पेंसरी हो गया, भाई लोग आ रहे जा रहे, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कहने का एग्जांपल है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो पब्लिक रिलेशन से लोगों का आना जाना रहता है, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ मदद चाहिए होती है, हम उसके बारे में ये ना सोचें कि भाई इनका आपस में है कुछ बहुत अच्छी दोस्ती, हमेशा इनके पास जाते हैं, या उस प्रकार से हमारी दोस्ती ना हो जाए कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए। वॉकिंग के लिए जाना है तो वो व्यक्ति चाहिए हमको वॉकिंग के लिए, अगर वो नहीं है तो आज मूड नहीं है हमारा वॉकिंग पे जाने का, अगर हमको खाना खाने जाना है तो वो व्यक्ति हमारे साथ में होना चाहिए। नाश्ते पे गए हम तो बाबा को याद करने के बजाय, बाबा को ये करने के बजाय हम उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, अरे आज वो व्यक्ति नाश्ते पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ चले गया करके उसको हम फोन करके बुलाए। एक लिमिट तक मैंने कहा ना ठीक है, लेकिन किसी पे भी डिपेंड होना, ब्राह्मण आत्मा बनने के बाद भी अगर हम इस चक्कर में फंसते हैं तो वो ठीक नहीं है। अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है, तो किसी भी प्रकार की अति है, अगर वो खाने पीने की अति हो चाहे मित्रता की अति हो, कोई भी है, तो वो अति जो है ठीक नहीं होती। तो हमें हमारे कनेक्शन को भी चेक करना है कि हमारे किसके साथ कितनी दोस्ती है और हम कितना उसके ऊपर डिपेंड है, या उसको तो हमारे ऊपर हम डिपेंड नहीं बना रहे। कई बार ऐसे होता है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि सामने वाला हमारे ऊपर डिपेंड हो जाता है और हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि ये व्यक्ति हमारे ऊपर डिपेंड है, तो उस चीज को हमें चेक करना है। तो ये हो गया 12th पॉइंट मित्रता। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट लिया हुआ है वो है मीडिया। मीडिया माना समाचार, जैसे आजकल का मीडिया होता है ना, तो मीडिया वाले क्या करते हैं, प्रेस रिपोर्टर जो होते हैं, न्यूज रिपोर्टर क्या करते हैं, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं और सनसनीखेज न्यूज ना, सबसे पहले कौन पहुंचा, कोई मर रहा है तो उसको बचाने नहीं जाएंगे वो, आपको कैसे लग रहा है अभी, आप यहाँ कैसे इस सिचुएशन में कैसे पहुंच गए आप, तो सनसनीखेज न्यूज। तो ब्राह्मण परिवार में भी मीडिया होता है ना, जो होता है बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो है लंदन का, तो यह है ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग या बीके ब्रॉडकास्टिंग। सबसे पहले खबर मिले और हम कैसे एक दूसरे को दें, जब तक न देंगे किसी को तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। हमको लगता है ये तो व्यक्ति हमारा बहुत नजदीक वाला व्यक्ति है, हम इसको दे बताए भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नहीं बताएगा, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे नजदीक का हो लेकिन उसके और कोई नजदीक का हो सकता है, तो वो दूसरे को तो बताएगा ही। तो कहानी बताते हैं ना कि एक राजा को एक सन्यासी फल देता है, तो राजा को अपनी रानी से बहुत प्यार होता है तो वो रानी को दे देता है, रानी को प्यार होता है सेनापति से वो सेनापति को दे देता है, सेनापति को प्यार होता है वो काम करने वाली एक वहां पे दासी से उसको दे देता है, ऐसा घूम फिर के वो फल वापस राजा के पास आ जाता है। तो राजा सोचता है देखो मैंने इसको दिया और ये उसने उसको दे, जो भी है करके, तो सच ने सर्कल यहाँ में स्नेह है अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हमको लगता है कि ये व्यक्ति मेरा खास है, लेकिन क्या वो व्यक्ति भी आपको इतना खास समझ रहा है कि आप उसको बताएं और वो थर्ड पर्सन को न बताए। और कहा ना कि हम एक बात बताएंगे वो दो बात बताएगा, थोड़ी और बड़ा चढ़ा के मिर्च मसाला हा? स्टोरी है पता नहीं तो वो सेकंड को बताएगा, थोड़ी मिर्च मसाला अपने हिसाब से ज्यादा लगाएगा, जो हमने यहाँ सुना था ना चाइनीज विस्पर्स, फिर वो तीसरे को बताएगा, वो चौथे को बताएगा, तो ऐसी जो है बात बढ़ती जाती है। तो ब्राह्मण परिवार में भी हम जैसे अभी इंग्लिश क्लास में हमने सुना, उसमें तीन बताए थे, ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। तो अगर कोई भी बात हमको कोई सुनाता है या मालूम पड़ती है तो ये देखो कि वो बात हमारे काम की है, दूसरा बात वो बात सच है या क्या है, या उस जो व्यक्ति बता रहा है उससे हमको फायदा कितना होने वाला है उस बात से। लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई कुछ सुने, हाँ ये व्यक्ति के पास से कुछ ना कुछ खबर मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सारा बुद्धि योग उसी में लगा होता है, सवेरे से लेकर रात तक उसी में लगे होते हैं कि भाई क्या खबर आई है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ से क्यों चले गया, वो क्या कर रहा है। एक ना एक लिमिट तक, थोड़े तक एक इन्फॉर्मेशन के रूप में कहना ठीक है, अपने आप को सेफ रखने के लिए, कुछ प्रॉब्लम है वो रखने के लिए ठीक है, लेकिन सारा हमारा बुद्धि योग जो है उसी में लगा रहे। मीडिया समाचार जैसे बताया ना ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग, तो जैसे बताते हैं कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, अगर कोई लूटपाट चोरी चकारी करता है जो भी है अगर कोई, तो उसमें एक तो होते हैं कि जो डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और एक जो लोग है इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने खाली प्लान बनाया हुआ है, जिन्होंने केवल सहयोग दिया हुआ है उस प्लान को सक्सेस होने के लिए। तो हम भी ऐसे किसी प्लान में सहयोगी तो नहीं बन रहे, किसी ऐसी बात को फैलाने के लिए सही तो नहीं बन रहे, क्योंकि हम जो बाहर फैलाते हैं वही चीज दोबारा लौट के हमारे पास आती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी अवस्था भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती है कि भाई कोई परचिंतन प्रदर्शन में पड़ा हुआ है, इन सारी बातों में पड़ा हुआ है व्यर्थ के चक्कर में, और उसकी अवस्था बहुत अच्छी हो, क्योंकि इन चीजों से बाहर निकलना ईजी नहीं होता है। एक बार पहले भी क्लास में कहानी सुनाई थी ना, वो सन्यासी की, उसको राजा जो है गोबर दे देता है खाने के लिए। सन्यासी जाता है राजा के पास सवेरे कि कुछ भिक्षा दो, तो राजा का मूड उस समय खराब होता है, तो सन्यासी राजा जो है सन्यासी को गोबर उठा के दे देता है, अपने तबेले में होता है गाय, यहाँ पे गोबर दे देता है। तो सन्यासी लेकर चले जाता है, तो काफी दिनों के बाद राजा जो है जंगल में जाता है शिकार खेलने, तो वो देखता है कि एक सन्यासी का ये है आश्रम है कुटिया, उसके बाहर बहुत बड़ा गोबर का ढेर पड़ा हुआ है। तो राजा को लगता है यहाँ तो कोई गौशाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये गोबर कहाँ से आ गया इतना ऐसे। तो वो अंदर जाता है कुटिया के, तो सन्यासी अंदर बैठा होता है ध्यान में, तो उसको पूछता है कि ये गोबर कहाँ से आ गया। तो सन्यासी आंख बंद करके जवाब देता है कि एक राजा ने मुझे एक दिन दिया था खाने के लिए, और एक समय आएगा कि राजा को ये गोबर खाना पड़ेगा। तो राजा को याद आता है, तो वो सन्यासी से माफी मांगता है। वो ये कहने का भाव ये कि हम जो देते हैं दूसरों को वही चीज हमारे पास रिटर्न लौट के आती है, क्रिया की प्रतिक्रिया जो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे इंग्लिश क्लास में सुना ना, अगर हम सोचेंगे बीमार हैं तो हम बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर वो सन्यासी को अपना पश्चाताप होता है, तो सॉरी राजा को पश्चाताप होता है, तो सन्यासी से माफी मांगता है कि वो मैं ही हूं, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से आपको दे दिया ऐसे करके। तो फिर राजा बोलता है सन्यासी को कि मैंने तो आपको थोड़ा ही दिया था, और ये तो इतना बड़ा ढीक बन गया पूरा, ये तो इतना बड़ा। तो सन्यासी उसको कहता है कि अगर हम कोई गलती करते हैं या कुछ भी ऐसी बात करते हैं, जैसे बाबा भी मुरली में कहते हैं कि पश्चाताप करके उसका प्रायश्चित कर लो आगे के लिए दोबारा ना हो करके, जब तक हम उसका प्रायश्चित या पश्चाताप नहीं करते हैं तो वो चीज जो है बढ़ती जाती है। तो फिर सन्यासी राजा कहता है कि मैंने तो आपसे माफी मांग ली, मुझे माफ कर दो, मैं ध्यान दूंगा, आगे से दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन अब इससे मुक्त कैसे हूं मैं। तो राजा कहता है कि ऐसा कोई काम करो कि जो आप नहीं कर रहे हो, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं हो। सन्यासी राजा को कहता है कि आप ऐसा कोई काम करो जिसमें आपकी कोई गलती ना हो, कुछ आपका ये ना हो, लेकिन लोग आपकी निंदा करें या आपकी ग्लानी करें, तो ये जो है कम होना शुरू हो जाएगा। तो राजा फिर अपने राज्य में वापिस आता है और एक शराब की बोतल लेके केवल चौराहे पर जाके बैठ जाता है लोगों के बीच में, पीता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, केवल बोतल हाथ में पकड़ के जाके बैठ जाता है। तो लोग उसके बारे में उल्टा सुलटा बोलना शुरू कर देते हैं कि देखो ये राजा कितना अच्छा था, और अभी इसको क्या हो गया है, तो पागल हो गया है, तो ये हो गया। कई लोग कहते हैं अरे आपको पता नहीं है, तो रोज ही पीता है, बोले आज तो सामने दिखाई दे रहा है हमको, ये ज्यादा पी लिया होगा इसलिए बाहर आके बैठ गया, ये तो रोज ही रात को पीते है, आपको क्या पता, हमने कही, मतलब सब उल्टा सुलटा बोलना शुरू कर देते हैं ऐसे। फिर वो शाम को वापिस राजा जो है सन्यासी की कुटिया के बाहर जाता है, तो गोबर एकदम कम हो गया होता है बहुत ऐसे। तो कहने का भाव ये है कि हम जो बाहर देते हैं वही चीज हमारे पास दोबारा लौट कर आती है। हम अगर कितना भी सोचे कि हम अच्छा अच्छा दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर वो नहीं है तो वो चीज हमको मिलने वाली नहीं है। हम भले योग में बैठकर कितना भी शुभ भावना का दान दे रहे हैं किसी के लिए भी, लेकिन अगर सचमुच वो व्यक्ति हमारे सामने आता है और हमको लगता है कि हाँ अभी आया है ना मेरे पास, अभी दिखाऊंगा इसको बराबर, अभी कुछ काम पड़ा है इसको दिखाता हूं मैं करके, तो आपकी शुभ भावना काम नहीं करेगी। जितना हम योग में दे रहे हैं उतना ही, कम से कम उसका आधा चलते फिरते भी हम प्रैक्टिस करें किसी भी व्यक्ति के लिए, कुछ भी अगर जो भी हम करते हैं, चाहे शुभ भावना का हो चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो वो चीज जो है फिर काम करेगी हमारे इस पे। तो ये कौन सा पॉइंट चल रहा था, 13 पॉइंट, क्या नाम था पॉइंट का, मीडिया समाचार। जो हम समाचार यहां वहां फैलाएंगे वही समाचार दोबारा हमारे पास लौट के आएगा किसी न किसी रूप में। अगर हम किसी की ग्लानी करेंगे तो वो भी हमारी ग्लानी करेगा। फिर कई बार ब्राह्मण आत्माएं ये देती है कि भाई हिसाब किताब, पिछले जन्म का हमारा हिसाब किताब होगा, आज हमने उसके साथ किया, किसी जन्म में उसने हमारे साथ कुछ किया होगा, अगर हम किसी को कुछ बोला किया तो ठीक है उस समय पिछले जन्म में हुआ, लेकिन उस समय पिछले जन्म में ना आप ज्ञान में थे ना वो ब्राह्मण आत्मा ज्ञान में थी, दोनों ज्ञान में नहीं थे। इस जन्म में हम दोनों ज्ञान में हैं, और उसके बाद भी अगर हम उस चीज को हिसाब किताब कह के बढ़ाए तो ठीक नहीं है। अगर हिसाब किताब ही होता है तो बाबा जैसे कहते ना, अगर हिसाब किताब मुक्त होते, अगर हम हिसाब किताब से, तो हमको लाइटनेस लगता है, फील होता है कि भाई हिसाब किताब कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी अवस्था ही खराब होती जा रही है, हमारी स्थिति और खराब होती जा रही, तो हम बोझ अपने पे चढ़ा रहे हैं। ठीक है, दोनों ब्राह्मण आत्माएं हैं, सामने वाले को इतनी समझ नहीं है, उसको रियलाइजेशन नहीं है, उसको फीलिंग नहीं हो रहा, इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर वो ज्ञान है तो आप उस हिसाब किताब को खत्म कर सकते हैं, उस हिसाब किताब को वहीं समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि पिछले जन्म का हमारा है कार्मिक अकाउंट, मानते हैं बिना कार्मिक अकाउंट के कुछ नहीं होता है, लेकिन इस जन्म में तो हम दोनों ज्ञान में है ना, पिछले जन्म में हमने गलती की थी, उस आत्मा ने किया था या हमने किया था, उस समय हम ज्ञान में नहीं थे, लेकिन हम दोनों इस समय ज्ञान में हैं। तो इस हिसाब किताब को हमें खत्म करना है, उस ज्ञान को समझ के उसको और बढ़ाना नहीं है कि इसके लिए मैं ऐसा करूं ऐसा करूं, नहीं। तो शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति जो है हम अपनी माफी मांग के जिस हिसाब से भी हम अपने हिसाब किताब को खत्म कर सकते हैं। जैसे कहा ना कि हम जो बाहर देते हैं वही चीज हमारे पास लौट के आने वाली है। अगर आज हम किसी का पैर खींच रहे हैं, जैसे कहते हैं शेर को सवा शेर हमेशा मिलता है, तो सवा शेर को डेढ़ शेर मिलेगा, डेढ़ को पौने दो शेर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो है वो चीज हमारे पास दोबारा आएगी लौट के। इसलिए बहुत ध्यान देना है किसी भी प्रकार की अगर हम बात करते हैं किसी के भी बारे में बिना सोचे समझे। तो बाबा ने एक मुरली में कहा है ना कि अपनी अवस्था को ठीक रखने के लिए कभी सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करो। तो इसमें एक बात और मैंने ऐड की है कि दूसरों के साथ अपना संबंध अच्छा रखने के लिए भी कभी सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करो। कि दो व्यक्तियों का आपस में क्या है हमको क्या पता, लेकिन हम दूसरे के प्रभाव में आके उसकी बात में बोले हाँ ये व्यक्ति ऐसा ही है, या हम सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, तो हम हमारा जो है अकाउंट उस व्यक्ति के साथ में बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया 13वां पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट जो 14वां पॉइंट है जो है मीठे बोल, ये भी एक प्रकार की माया है। बाबा ने कहा है कि मीठा बनना है तुम बच्चों को, मीठा बोलना है, लेकिन बाबा ने कभी चाटुकारिता के लिए नहीं कहा है। जिसको दूसरी भाषा में अगर हम कहें डायरेक्टली तो चमचागिरी करने के लिए नहीं कहा है बाबा ने, किसी की हाँ में हाँ मिलाना। जैसे अभी 13वां पॉइंट में बना, हमको कुछ पता नहीं है सच्चाई क्या है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ हमारा कनेक्शन अच्छा है, उस व्यक्ति के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है, या हम उस व्यक्ति के प्रभाव में हैं, उस व्यक्ति के कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने कभी हमको मदद की है किसी प्रकार की, और उसके प्रभाव में आकर हम जो है उस व्यक्ति के इसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। भगवान सब देखता है। एक गीत बचपन से ही काफी अच्छा लगता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, वहां पैदल ही जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो अंत में हमारी अवस्था क्या होगी? आज तो हम इसको उसको बोल के लोगों को बोल के अपना काम चला रहे हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। बड़ों को भी थोड़े दिन पहले की मुरली में इसमें कि बड़ों को भी चलाते हैं, बाबा से भी शायद अव्यक्त मुरली में था शायद चलाते हैं, लेकिन अंत में क्या होगा? बाबा हमारी सच्चाई सफाई देखता है। ऐसा नहीं कि बाबा को कुछ पता नहीं, बाबा कहता ना मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन कई बार मुरलियों में कहता है कि बाबा को क्या लेना देना है आपसे, लेकिन बाबा को सचमुच सब कुछ पता होता है। बाबा केवल आपकी जो अंदर की सच्चाई सफाई देखता है कि आप कितने बाबा के साथ ईमानदार हो वफादार हो, बाबा वो देखता है। इसलिए बाबा कहता है कि कोई गलती भी हो जाए तो बाप से माफी मांग लो करके, तो बाबा उसमें भी देखता है कि हम कितनी ईमानदारी से वफादारी से बाबा से माफी मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बाबा कोई चला रहे, गलती हमारी है और हम बोले नहीं बाबा उसकी गलती थी करके। तो जो है मीठे बोल, जो है मीठा बोलना बहुत अच्छी बात है, एक रिस्पेक्ट रिगार्ड बड़ों को देना सबको देना होना ही चाहिए। ब्राह्मण परिवार है हमारा, श्रेष्ठ परिवार है, बड़े हैं, बाबा ने निमित्त बनाए हैं, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हम मीठा बोल के माना चाटुकारिता करके, बाबा कहता मुरली में कि अपना काम निकालो मीठा बोल के। मीठा बोल के माना ये नहीं कि आप स्वार्थी बन जाओ, उस प्रकार से बाबा नहीं कहता है। ये शब्द जो है ना हमने गलत अर्थों में ले लिया है, मीठा बोलना जो है गलत अर्थों में ले लिया है। हमारा काम जहाँ पे होता है हम मीठा मीठा बोलेंगे, और फिर वही व्यक्ति जब बाद में हमारे पास आता है तब हम अपना दिखाते हैं, स्वरूप दिखाते हैं फिर उसको। तो मीठा बोलना अलग चीज है, लेकिन अपने स्वार्थवश उस चीज को यूज करना वो अलग चीज है। तो कल हमने 7 पॉइंट देखे थे और आज 7 पॉइंट देखे, बराबर। 8वां पॉइंट कौन सा था आज का? मिक्सचर। 9वां पॉइंट मानशान। 10वां मशीन। 11वां मोह। 12वां मित्रता। 13वां मीडिया। 14वां मीठा बोलना। मोबाइल मैनेजमेंट। तो हमने 14 पॉइंट देखे एम की माया। इसको आप और भी चिंतन करके और भी बढ़ा सकते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में जो भी एम से माया आती है वो कौन से रूप में माया आती है। तो इन बातों पे अगर हम गौर करेंगे, सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे, तो हम इस ब्राह्मण इसमें जीवन में आगे जा सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो जितना और आगे जाते जाएंगे, कल जैसे बताया था ज्ञान भी सूक्ष्म होते जाता है, गुह्य होते जाता है, तो माया भी जो है सूक्ष्म और गुह्य होती जाती है। तो हम अपने आप को इससे सेफ रख सकते हैं। ओम शांति।